श्लोक संख्या 17 पहले पढ़ दें अनुवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 17 और 18 श्लोक संख्या 18 बोर्ड पे है। श्लोक संख्या 17 का अनुवाद पढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक है वृतासुर की यशस्वी की मृत्यु। अनुवाद। मेरे शत्रु इस युद्ध को द्यूत क्रीड़ा का खेल मानो, जिससे हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण की पासे हैं, बाहक पशु की चौसर है। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये सब भाग्य पर निर्भर है। और फिर आज का श्लोक श्री सुगवाच। इंद्र मृतवच श्रुत्वा गत अलीकम् अपूजयत भीतवज्र प्रहसन ताम आह गत विस्मय। श्रीशुक उवाच इन्दुवृतावच श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीत वज्रः प्रहसं तमाहगत विस्मयः। श्रीशुक उवाच इन्द्रवृतो वचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् भीतवज्रः प्रहसं तमाहगत विस्मया। शीशुक उवाच इन्द्रवृता वचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीतवज्रः प्रहसं तमाहगत विस्मयः। श्री शुकवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र राजा इंद्र ने वृत्रवचः वृतासुर के वचन श्रुत्वा सुनकर गत अलीकम द्वैत भाव से रहे अपूजयत पूजा की गृहीत वज्र वज्र धारण किए हुए प्रहसन हंसते हुए तम मृतासुर से आह कहा गत विस्मय आश्चर्य रहित होकर। अनुवाद और तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सुखदेव गोस्वामी ने कहा वृतासुर के निष्कपट तथा साधु वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वह हंसा और वृतासुर से इस प्रकार बोला। तात्पर्य देवताओं में श्रेष्ठ राजा इंद्र को अपने शत्रु वृतासुर का उपदेश सुनकर आश्चर्य हुआ। वह चकित था कि असुर होकर भी कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब उसे प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे परम भक्तों की याद हो आई जो असुरों के ही कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं। कभी कभी तथाकथित असुरों में श्री भगवान के प्रति अति भक्ति भाव रहता है, इसलिए इंद्र विश्वासपूर्वक वृतासुर की बातों पर हंसा। तो यहां पर ये प्रसंग चल रहा है वृतासुर की यशस्वी मृत्यु। पिछले श्लोक तक हमने वृत्तासुर का प्रवचन सुना, प्रवचन उनका समाप्त हो गया है और अब सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, वृत्तासुर के निष्कपट तथा साधु वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वेत भाव से वह हंसा और वृत्तासुर से इस प्रकार बोला। सुखदेव गोस्वामी यहां बता रहे हैं कि वृत्तासुर में कोई कपट नहीं था, वो कपटी नहीं थे कि वहां प्रवचन देकर इंद्र को मोहित करना चाहते हो या इंद्र के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हो ताकि वो पिघल जाए, ऐसा कोई विचार नहीं था उनका। वो सरलता का लक्षण प्रकट कर रहे थे और यही लक्षण होता है वैष्णव का, सरलता ही वैष्णवता है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है सब। तो वृत्तासुर जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया और इंद्र बहुत हैरान हो गए सुनकर। ये प्रवचन सुनने के बाद उनका ध्यान, उनका चित्र जो भगवान के चरणों में लगा हुआ था, ये देखकर जो है इंद्र हैरान हो गए कि असुर कुल में राक्षस योनि में जन्म लेने पर भी वृत्तासुर इतना उच्च कोटि का भक्त है। इसलिए इंद्र के लिए भी बहुत बड़ी समस्या थी कि अब वो वैष्णव के साथ युद्ध कर रहा है, इंद्र जो है वैष्णव के साथ युद्ध कर रहे हैं और उनके ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, उनके साथ आक्रमण करना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में भी हमने ऐसे ही देखा, अर्जुन भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हैं और भीष्म पितामह के साथ युद्ध कर रहे हैं। भीष्म पितामह महाजन हैं, अर्जुन भगवान के सखा हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, जब ऐसी परिस्थिति शास्त्रों में आती है तो अधिकांश जो ये भगवान की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर भक्त आपस में झगड़ा करते हैं द्वंद्व के कारण तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, कि दो भक्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम कहें कि एक वृत्तासुर है और एक इंद्र है। तो इसलिए हम लोग बड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि साधारण जो भक्तों में जो झगड़ा होता है उसकी तुलना वृत्तासुर से ना की जाए और ना उसकी नकल की जाए, कि युद्ध करें मंदिर के प्रांगण में और एक जो है प्रवचन देना शुरू कर दें, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होगा नहीं। ये सब जो है कथाएं जितनी भी भागवत में हैं, कई ऐसी कथाएं हैं भागवत में जो भगवत इच्छा से हुई हैं ताकि हम सबको बहुत सारी शिक्षाएं मिले। अजामिल की कथा, नाम की महिमा और भरत महाराज का तीन जन्म में बार बार प्रकट होना, पहले भरत महाराज के रूप में, फिर हिरण के रूप में, उसके बाद फिर जड़ भरत के रूप में। श्री श्री राधिका रमण की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जाए, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए। तो इस प्रकार कई कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में जिससे यह पता चलता है कि भगवत इच्छा से कई ऐसे प्रसंग सुनने को आए हैं श्रीमद् भागवत में। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृत्तासुर ने जब देखा, इंद्र ने जब देखा वृत्तासुर को और वो हैरान हो गया कि वृत्तासुर इतने उच्च कोटि का भक्त है, ये कैसे संभव हो सकता है कि राक्षस योनि में कोई इतना उच्च कोटि का भक्त बन सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर है। कोई राक्षस योनि में जन्म लेता है या राक्षस परिवार में जन्म लेता है, बहुत कठिन है भक्ति करना, आसान नहीं है। इसलिए यहां वृत्तासुर को प्रहलाद महाराज का स्मरण हुआ, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, प्रहलाद महाराज का स्मरण हुआ कि प्रहलाद महाराज जो है असुरकुल में उनका जन्म हुआ है और उनकी दीक्षा किससे हुई, नारद मुनि से हुई। और तो और प्रहलाद महाराज के जो आगे पोते हैं विरोचन के पुत्र बलि महाराज, वो भी भगवान के भक्त बने हैं। तो ये असुरकुल में है, हिरण्यकश्यपु के वंश में है, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं। ये तभी हो पाता है जब किसी के ऊपर भगवत कृपा हो, भगवान के भक्तों की कृपा जब हो तब ये संभव हो पाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, किराट होनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनः खशादया यन्ने च पापा यद अपाशया आश्रयः सुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी ने श्लोक को साबित करके दिखा दिया पूरे पृथ्वी में। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किराट कौन है। किराट वो है जो प्राचीन भारत के लोग, प्राचीन भारत के लोग, कई लोग चले गए, मॉरिशस चले गए, कुछ अफ्रीका की तरफ चले गए, या तो उनको गुलाम बना के ले जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इस तरह से जो अफ्रीका के लोग हैं उनको भी किराट बताया गया। तो इस तरह से हूना है, हूना मतलब जो जर्मनी का एक भाग बताया जाता है, रशिया का एक भाग बताया जाता है। प्रभुपाद जी ने ये जो दिया है इस प्रकार से विवरण दिया है, ये महाभारत में इस प्रकार का वर्णन आता है, आदि पर्व और भीष्म पर्व में इस प्रकार का वर्णन आ रहा है कि ये कौन कौन से इलाके से हैं। आंध्र, आंध्र तो हम जानते हैं दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है, पूरा राज्य ही है। तो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है, पुलिंद, पुलिंद है जो ग्रीक्स के लोग हैं, पुलकशाह ये भी एक अन्य राज्य बताया गया है, आभीर ये पुराना सिंध, और शुंभहा ये भी एक अन्य राज्य है, यवनहा, यवनहा तो जानते ही कौन है, और जो तुर्की क्या कहते हैं उसको, टर्क्स जो हैं, खश आदया मंगोलियन प्रोविंस के जो लोग हैं। तो इस प्रकार ये सब जो हैं कोई वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते, ना ये ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यासी है। जीवन कट रहा है इनका, पशु की तरह जीते हैं या असुर की तरह जीवन बिताते हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाए तो भागवत ही बता रहा है कि यहां तक कि कई पापी से पापी व्यक्ति होंगे वो सब पवित्र हो जाते हैं जब ऐसे लोगों के ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा होती है। भक्तों की जब कृपा होती है तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। इन लोगों में परिवर्तन आ सकता है जब भगवान के भक्तों की कृपा हो। अद्वैताचार्य को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीपाद वल्लभ आचार्य सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं देखिए ये है अद्वैताचार्य, इन्होंने मलेच्छों को भी वैष्णव बना दिया है। कितने उच्च कोटि के वैष्णव स्तर पर हैं ये कि इन्होंने मलेच्छों को भी वैष्णव बना दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं तो मलेच्छों को भक्त बनाना, कोई मांस भक्षण कर रहा है, कोई गो मांस खा रहा है, सोच के देखिए उसको वैश्य बनाना संभव है क्या? असंभव कार्य है, बहुत मुश्किल है। हाल ही में कलकत्ता में आप कहते हो दुख होता है, लेकिन कहना नहीं चाहिए कृष्ण बलराम जी के सामने, लेकिन वहां पर लाखों लाखों गायों का वध हुआ वहां के पशु बोध गृह में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं किया जाए, लेकिन वहां की पुलिस वालों ने नहीं सुना और अंदाजा नहीं लगा सकते कितने गायों का वध किया गया है। कितने दुखी होंगे भगवान ये सब देखकर। आज हम चिंतित हो जाते हैं कि बारिश नहीं आ रही है, बादल लटक रहे हैं लेकिन बरसात नहीं हो रही है, काले काले बादल आते हैं हंसते हंसते चले जाते हैं, जब भी दिल्ली में आते हैं देखते हैं उनको हंसी आती है और दिखा के कि हम आ चुके हैं लेकिन हम जा भी रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा है और पाप का खड़ा बढ़ता जा रहा है। पशु हत्या चल रही है, गौ हत्या चल रही है, लोगों को होश नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी इंद्र तृप्ति के लिए, जीवा की तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, धन अर्जित करने के लिए लोग अपनी माता को भी मारने के लिए तैयार है। ये कलयुग का लक्षण है। तो वैष्णव जो है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण भी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो वैष्णव बने। जैसे कि हम जानते हैं पद्म पुराण का श्लोक, बहुत प्रचलित श्लोक है, षड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरोर न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। षट कर्म, षट कर्म क्या है? ब्राह्मण के ददाति प्रतिगृणाति, नहीं दान प्रतिग्रह क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो ये छह कार्य ब्राह्मण के बताए गए, इसमें विशारद हो, कोई एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, है ना। लेकिन अगर वो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, तो वो गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन वैष्णव स्वपचो गुरु, कोई स्वपच है, कुत्ता खाने वाला है,
वो वैश्य बन सकता है अगर वो भगवान का भक्त हो तो, ऐसा पद्म पुराण हमें बता रहा है। तो प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं कि करोड़पति व्यक्ति है उसके पास सैकड़ों और हजारों डॉलर हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास अगर सैकड़ों हजारों डॉलर हैं तो वो करोड़पति है, यह आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब कोई अगर ब्राह्मण है तो यह आवश्यक नहीं कि वो वैष्णव हो, लेकिन वैष्णव जो है वो ब्राह्मण होता है। तो इसलिए ये बातों को बड़ा ध्यान रखना है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए किसी के शरीर को देखकर, किसी के परिवार को देखकर हमें यह आंकड़ा नहीं लगाना चाहिए कि यह व्यक्ति वैष्णव कैसे हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी भी इस बात को, इसकी पुष्टि कर रहे हैं श्री उपदेशावर्त में श्लोक संख्या 6 में, दृष्टि स्वभाव जनितैर बभुषश्च दोषै न प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्ये। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, दृष्टि स्वभाव जनितैर बभुषश्च दोषै, कि देखिए वपुष मतलब उनके शरीर में कोई दोष नजर आ रहा है, उसको देखकर हम अपना अंदाजा न लगाएं कि शायद ऐसा होगा वैसा होगा। न प्राकृतत्व यह भक्त जनस्य पश्येत, ये प्राकृत नहीं होता शरीर, ऐसे भक्त का शरीर प्राकृत नहीं होता है, ऐसे भक्त का शरीर जो है अप्राकृत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और बार बार आलिंगन कर रहे थे, उनके शरीर में पस था, जंगलों से गुजरते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे थे और इतना पस था, इतने रुग्ण हो गया था उनका शरीर, उन्होंने सोचा कि मुझे तो आत्महत्या करनी चाहिए, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके क्या मुझे दिखाऊंगा श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या दिखाऊंगा अपने शरीर को, इस तरह से उनको भी कष्ट पहुंचाऊंगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार उनका आलिंगन कर रहे थे, सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए, उन्होंने कहा मेरे कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को कष्ट हो रहा है, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। उन्होंने जगदानंद पंडित से कहा कि क्या करूं बताइए। तो श्री चैतन्य जगदानंद पंडित ने कहा कि वैसे भी देखिए चतुर्मास लगभग समाप्त हो चुका है, और अच्छा यही है कि आप, नहीं चतुर्मास नहीं, शायद डोल पूर्णिमा जो भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पंडित ने कहा कि अच्छा होगा कि आप वापस वृंदावन जाएं, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि आप वृंदावन जाएं, लीला स्थलियों का पता लगाएं, अब यहां और अधिक समय लेने का कोई लाभ नहीं है। सनातन गोस्वामी ने कहा यह तो अच्छा विचार है। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु कहा कि वृंदावन जाना चाहता हूं मैं, ऐसा मुझे जगदानंद पंडित ने सुझाव दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसकी यही मत, जग्गा इधर आओ, तुम्हारी ये हिम्मत तुम जानते नहीं कौन है, तुम्हारे गुरु हैं ये, मेरे भी गुरु हैं ये, जगत गुरु हैं। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का फिर से आलिंगन किया था और सनातन गोस्वामी का शरीर फिर से दिव्य नजर आ रहा था, फिर से उनका शरीर बड़ा सुंदर हो गया देखने में। श्री चैतन्य महाप्रभु का देखो ये जो शरीर है तुम्हारा नहीं है, मेरा है, ये शरीर अप्राकृत शरीर है, ये शरीर दिव्य है, मुझे इस शरीर के द्वारा कई कार्य कराने हैं, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें शरीर छोड़ना, और ये जगह तो कल का आया हुआ लड़का है, ये तुम्हें क्या सुझाव देगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा लगता है नहीं नहीं, जगदानंद पंडित आपके बड़े प्रिय हैं, उनको तो आप डांटते हैं, मुझे तो डांटते भी नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है मुझे, जगदानंद मुझे इतना प्रिय नहीं जितना तुम प्रिय हो। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी के देह को देखकर, किसी शरीर को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये भक्त है या नहीं भक्त है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से किसी पहचाना नहीं जाता। श्रील प्रभुपाद जी भी देखिए आखिरी समय में उनका शरीर कितना रुग्ण हो गया था, डॉक्टर कपूर आए थे वृंदावन दिल्ली से, और शरीर कितना रुग्ण हो गया था कि शरीर में मांस भी खत्म हो चुका था, लगभग हड्डियां रह गई थी बिल्कुल, और तरह तरह की बीमारियां श्रील प्रभुपाद जी को लगी हुई हैं शरीर को। प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं फिर भी श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं दशम स्कंद का। बीच में पितामह को देखिए बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, पांडवों को कौरवों को धर्म उपदेश दे रहे हैं। इसलिए कैसे पहचाना जाए, वैश्यों को पहचाना बड़ा मुश्किल है। वैश्य मेरे क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, गदाधर पंडित भी नहीं पहचान पाए पुंडरीक विद्यानंद जी को, लीला है भगवान की। गदाधर पंडित देखे पुंडरीक विद्यानंद जी इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं, पान खा रहे हैं, थूकदान साथ में है, इतने सारे लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐश्वर्य से रह रहे हैं, तेल लगाया हुआ आंवला का तेल लगाया सर में, खुशबू आ रही है उनके शरीर से, लेकिन जब गोविंद थे, गोविंद ने, गोविंद ने कौन या मुकुंद मुकुंद थे, उन्होंने फिर जब उनकी लीलाएं सुनाई, पूतनावत की लीला सुनाई, तो फिर उन्होंने देखा कि कदाचित पुंडरीक विद्यानिधि जो है अपने को संभाल नहीं पाए, भाववेश में आ गए और उनको कोई काबू में नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो 9 घंटे लगातार मूर्छित रहे। वैष्णव ने क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, बड़ा मुश्किल है वैष्णव को पहचानना। यहां बताया गया है कि हालांकि शरीर में हर प्रकार के कमियां नजर आ सकती हैं, हो सकता है कि उसका शरीर जो है रुग्ण हो, वो देखने में काला हो, बीमार हो, कुरूप हो, लेकिन ये पहचानना, इस तरह से पहचानना वैष्णव को बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है। ये वैष्णव अपराध इस प्रकार से पहचानना। और बता रहे हैं कि बिल्कुल इसकी तुलना गंगा जी से की गई है। गंगा मसाम न खलु बुद्ध फे न पंखेर, श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं ब्रह्म द्रवत्व अपगच्छति नीर धर्मई। इसका मतलब क्या है कि गंगा जी पवित्र नहीं दिखाई देती है बरसात के मौसम में, तो काफी फेन नजर आता है, झाग नजर आता है और काफी गंदगी नजर आती है। कई बार तो लोग शरीर को भी वहां पर अस्थि कला अस्थि जो होता है वो भी प्रभावित कर देते हैं, या कई बार पशु भी नजर आते हैं गंगा जी में मरे हुए नजर आते हैं। उसको सोच के कोई सोचे कि उसको देख के सोचे कि गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए, गंगा जी अपवित्र हो गई है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती है, तो गंगा जी में कभी भी स्नान किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में गंगा जी में स्नान किया जा सकता है। गंगा जी हमें पवित्र करने वाली है, हम गंगा जी को पवित्र नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो गंगा जी को भगवान ने कहा ब्रह्म विवर्त पुराण में कि जब शुद्ध भक्त आएंगे संकीर्तन करते हुए और स्नान करेंगे आपके जल में तो आप पवित्र होंगे, लेकिन उसके लिए शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। हम भी सोचे हम गंगा जी में जा रहे हैं, हम गंगा जी को पवित्र कर रहे हैं, तो हमें से कुछ विरले भक्त हो सकते हैं जो शायद कर पाए। तो इस प्रकार बड़ा सावधान रहना है हमें। तो यहां वृत्रासुर को इंद्र देख रहे हैं, वो समझ गए हैं भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, फिर भी उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। भीष्म पितामह, कई लोग पूछते हैं कई भक्त के भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे थे, वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ताकि भीष्म पितामह जो है भगवान के वीर रस का आस्वादन कर सके, और कोई आशय नहीं था, और कोई आशय नहीं था भीष्म पितामह का। वो तो वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, वो तभी हो सकता है जब वो उनके खिलाफ लड़े। तो भीष्म पितामह ने बाणों की बरसात कर दी अर्जुन के ऊपर, अर्जुन जो है अपने कमान को भी नहीं उठा पा रहे, धनुष को भी नहीं उठा पा रहे थे, रथ भी तोड़ दिया भीष्म पितामह ने, रथ से नीचे आ गिरे। परम भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने अपने भक्त के लिए अपना वचन तोड़ा और रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर भागे बड़ी तेजी से। भीष्म पितामह यही दृश्य देखना चाहते थे, उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, लेकिन अर्जुन ने उनको रोक लिया कि ये क्या कर रहे हैं, कृष्ण आपने तो वचन लिया है कि आप इस युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन त्या प्रति जाने ही नामे भक्त आप प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं भीष्म पितामह, भगवान को इस प्रकार देखना चाहते हैं रौद्र रूप में। तो ये शुद्ध भक्ति जब इच्छा होती है तो हम सोच नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से प्रकट होने वाले हैं। जय विजय भी माधुरी कादंबनी में ये लिखा है, विश्वनाथ सिंह ठाकुर और भागवत की टीका में भी लिखा है कि जय विजय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान वैकुंठ में तो सब आपकी सेवा कर रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं आपसे, लेकिन आपसे कोई युद्ध नहीं कर रहा, कोई ये ना कहे आपके अंदर युद्ध करने की क्षमता नहीं है, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है कि हम लोग आपके शत्रु बनकर आपकी सेवा करें। भगवान ने उस इच्छा को पूरा किया और जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रूप में प्रकट हुए, जो देखने में सुंदर नहीं थे लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया। हालांकि शत्रुता उन्होंने दिखाई लेकिन सेवा तो भगवान की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे असुर हुए, कई राक्षस हुए, और प्रहलाद महाराज तो स्वयं मां भागवत है जो हिरण्यकश्यप के ही परिवार में जन्म लिए। हिरण्यकश्यप स्वयं भक्त हैं, वैकुंठ के द्वारपाल हैं और उनके घर में प्रहलाद महाराज जन्म ले रहे हैं, मां भागवत जन्म ले रहे हैं, तो देखने में लग रहा है कि उनके पिता जो है राक्षस हैं, लेकिन उनके सुपुत्र प्रहलाद महाराज तो मां भागवत है। भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे बालक जन्म लेता है उस कुल की 14 पीढ़ियां तक जाती हैं। प्रभुपाद कहते हैं वाई लॉर्ड नरसिंहदेव इज सेइंग 14 जनरेशन 100 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड, ऐसा प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि वाई लॉर्ड नरसिंहदेव इज सेइंग 14 जनरेशन 100 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड, तो ये प्रभुपाद ही कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान का जो भक्त है वहां भागवत किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है। प्रभुपाद जी भागवत के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय के 16 श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा, आपका यथारूप पढ़ के सुनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आर इन अ पोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ प्रहलाद महाराज। ऑल ओवर द वर्ल्ड 99% ऑफ द पीपल आर गॉडलेस डेमेंट एंड देयरफॉर आवर प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रहलाद महाराज इज ऑलवेज हैम्पर्ड बाय मेनी इंपेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ बींग डिवोटीज। The American boys who have sacrificed everything for preaching Krishna consciousness are charged with being members of the CIA. Moreover, the seminal Brahmanas in India who say that one can become a Brahmana only if one is born in a Brahmin family charge us with ruining the Hindu system of religion. Of course, the fact is that one becomes a Brahmana by qualification because we are training Europeans and Americans to become qualified and are awarding them Brahminical status. We are being charged with destroying the Hindu religion. प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले हिंदू ब्राह्मण ही थे। ये हिंदू ब्राह्मण ही थे जो चांद काजी के पास गए और बोले कि हमारा हिंदू धर्म नष्ट कर रहा है, निमाय जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से कृष्ण का नाम ले रहा है, पागल से हो गए ये लोग, परेशान कर रहे हैं, हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं ये लोग। प्रभुपाद कहते हैं हमारे हिंदू ब्राह्मण ही गए थे चांद काजी के पास कंप्लेंट करने के लिए, ये तो वो लोग तंग नहीं कर रहे थे। फिर क्या लिख रहे हैं, nonetheless confronting all kinds of difficulties we must spread the Krishna conscious movement with great determination like that of Prahlad Maharaj. In spite of being the son of divine Hiranyakashipu, Prahlad never feared the chastisement of the seminal Brahmana sons of a demoniac father. Shand aur Amal ke kitna kashu de rahe the unko Hiranyakashipu ke kehne par, kitne tarike se unko mara jana tha, lekin Prahlad Maharaj jo hai ghabraye nahi kyunki unka chit, unka man, unki indriya bhagwan ki seva mein lagi hui thi. तो कहने का अर्थ यह है कि भक्त जो है किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति वो कर सकता है। नारायण प्राण सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु तुल्यार्थ अभिदर्शन। हाँ, स्वर्ग जाए नरक जाए, मुक्ति की अवस्था हो या ना हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो तो भगवान का भक्त बनना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा जन्म जो है ससुर परिवार में हुआ, राक्षस परिवार में हुआ है और रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मैं प्रभावित हूं, लेकिन आपकी हेतु की कृपा जो कि आपने ब्रह्मा जी तक नहीं दी, शिव जी को तक नहीं दी, लक्ष्मी जी तक नहीं दी, आपने अपने जो कर कमल है मेरे सर पर रख दिए हैं, प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब लोहा जो है अग्नि के संपर्क में आता है तो वो लोहा लोहा नहीं रह जाता है, वो अग्नि का कार्य करता है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त, अगर वो असुर परिवार में भी है लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है तो वो अग्नि का कार्य करता है और वो वैष्णव बनता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब इस प्रकार के असुर और राक्षस भक्ति करते हैं तो वो भगवान को ज्यादा प्रिय है, भगवान उनकी भक्ति को ज्यादा हृदय से स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी जी की भक्ति को इतने हृदय से नहीं स्वीकार करते जितना कि उन लोगों की भक्ति स्वीकार करते हैं जो राक्षस योनि में, चंडाल योनि में या मलेच्छ योनि में या यावण परिवार में जन्म लिए हैं। क्यों, क्या कारण है? कारण यह है कि ऐसे परिवार में भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वातावरण ही दूषित होता है। और आज के समय जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं 99% जो ऐसे परिवार हैं वो सब आसुरी प्रवृत्ति के हैं। एक बार एक भक्त जो है वो एक भक्त बना था एक परिवार में, एक लड़का, और जब भक्त बना तो उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए कि भक्त क्यों बना। तो उस भक्त से पूछा, उस पुत्र से पूछा, अपने पुत्र से पूछा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें पूरा जीवन भर खिलाया पिलाया है ना, तुम्हें इतना खिलाया पिलाया मैंने, बड़ा किया और उसके बाद सारी व्यवस्था तुम्हारे के लिए की, लेकिन तुम जो है अब जा रहे हो इस कौन में, भक्त बनना चाह रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, घर में भी कुछ खाते नहीं हो, मंदिर में जाके प्रसाद लेते हो क्या क्या तुम्हें भूल गए तुम। तो लड़का क्या बोला जानते हैं? लड़का बोला भगवान तो गीता में कह रहे हैं, बुरा मत मानेगा कि सिर्फ उदाहरण देने समझने के लिए, यज्ञ शिष्टा शिना क्षमता भुचंते सर्व किल विषयी भुंजते थे अगम पापा पचनते थे आत्म कारणा। उन्होंने कहा तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बड़ा सरल था वो वक्त, भगवान कह रहे हैं गीता में तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, जो यज्ञ में अर्पित भोजन खाते हैं, यज्ञ में अर्पित जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, संत लोग होते हैं वो तो, लेकिन जो अपनी जीवा की तृप्ति के लिए खाते हैं वो केवल पाप खा रहे हैं। तो मैंने तो इतने साल जो है पाप ही खाया, अभी तो मैं प्रसाद ले रहा हूं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि बड़ा मुश्किल है भक्त के परिवार ना हो, बहुत मुश्किल है, सब जो है विरोधी हैं, आपके भाई आपके बहन आपके माता पिता है ना, सब चाहते हैं कि आप शादी कर लें, मंदिर ना जाएं, बिजनेस करें, नौकरी करें, जॉब में जाएं, परिवार अपना फैलाएं, तो ऐसे ही लोग चाहते हैं इस संसार में। आज के समय सब ऐसे ही वातावरण हो गया है, कोई चाहता नहीं कि कोई भक्त बने, तो कोई भक्त बनने लगता है तो उसको पीछे खींच लेते हैं, ये कहां जा रहे हो, इधर आओ। आप में से कितने लोग गए ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, सर सर बताइए, हाथ खड़ा करिए। बुरा ना मानिएगा, वरा पुराण में एक बात लिखी है, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, आप तो सब वैष्णव हैं, आप सब भक्त हैं। वरा पुराण में क्या लिखा, राक्षसा कलिम आश्रित्य जायते ब्रह्म योनिषु। राक्षस लोग जो है कलयुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, हरे कृष्ण, बुरा मत मानिएगा। इस वजह श्रीधर महाराज ने पूछा था एक बार इसी तरह से एक क्लास में, तो बहुत लोग उठाए हाथ, बड़े खुश हो रहे थे। तो फिर महाराज ने श्लोक को उठ किया, बड़ा पुराण से जय धर्म में भक्तियों ठाकुर ने लिखा है। तो ये जो यज्ञ पत्नियां हैं, देखिए यज्ञ पत्नियां कितने सौभाग्यशाली थी, कृष्ण बलराम प्रसाद के लिए आ रहे हैं लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया, वो जो है अपने वैदिक रिचुअल्स में लगे हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या यज्ञ कर रहे हैं, वो पहचान ही नहीं पाए कृष्ण बलराम को कि कौन है, जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो आपके द्वार पे खड़े हैं, आपसे प्रसाद मांगने आए, आपने मना कर दिया। और जो उनकी पत्नियां थी वो तुरंत चले गए कृष्ण प्रसाद बलराम जी को प्रसाद देने के लिए। तो ये देखिए कहने का अर्थ ये है कि इसलिए कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है, कोई धनी परिवार में जन्म ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण हो गया। एक राक्षस जो है वो किसी परिवार में भी जन्म ले सकता है फिर भी वो भक्त बन सकता है। लेकिन असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, जो भगवान के आदेश अनुसार नहीं चलता है वो व्यक्ति असुर है। लेकिन बलि महाराज को जो बीज मिला, भक्ति लता बीज मिला, वो अपने पितामह से मिला, प्रहलाद महाराज से, और वो फलीभूत हुआ जब भगवान वामन देव उनके समक्ष प्रकट हुए बलि महाराज के सामने। तो इसी तरह से हम देखते हैं अद्वैताचार्य जो हैं उनके सारे सुपुत्र भक्त नहीं थे, मार्ग से भटक गए, है कि नहीं। हरदास ठाकुर यमन परिवार में उनका जन्म हुआ लेकिन महाभागवत है, नामाचार्य की उपाधि दी श्री चैतन्य महाप्रभु को। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए, सर्वो भट्टाचार्य जो कि भगवान के भक्त बन चुके थे, सर्व भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि आप दक्षिण भारत जा रहे हैं वहां पे और रामन राय से मिलेगा। जब रामन राय से मिलने के लिए गोदावरी नदी के तट पर आए तो रामन राय पहुंचे वहां पर, श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके बाहर निकले थे और जैसे ही उन्होंने रामन राय को देखा, रामन राय का आलिंगन किया, आसपास जो ब्राह्मण थे वो हैरान हो गए, ये तो सन्यासी है और ये कायस परिवार का है, ये क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं, ये सन्यासी आलिंगन कर रहा है, क्या बात है, रामन राय तो कायस परिवार के हैं। तो रामन राय अपने आप को बहुत अदब मान रहे थे लेकिन सर्व भट्टाचार्य ने क्या बोला कि सबसे बड़े रस तत्व के ज्ञाता जो है वो रामन राय है, इस समय पृथ्वी में आप उनका जरूर सानिध्य प्राप्त करें, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए, ये ना देखे कि मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं क्यों संग करूं उसका, ये गृहस्थ है, ये कायस परिवार का है। तो साधु संघ करते हुए अगर हम ये धारणा बनाए रखेंगे कि ये गृहस्थ है, ये ब्रह्मचारी है, इसका संघ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी का संघ करेंगे तो शायद हम ब्रह्मचारी ना बन जाए तो दूर रहो, और ब्रह्मचारी सोच रहा है कि गृहस्थ का संघ करेंगे तो गृहस्थ ना बन जाए उससे दूर रहो, है ना। लेकिन फिर साधु संघ का अर्थ क्या हुआ? फिर जो शास्त्र माने गए साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र कोय लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होय। इसलिए साधु संघ करते हुए हमें इस विचार दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, कौन से आश्रम है। वैश्य बनने के लिए वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा और उसके लिए साधु संघ करना पड़े, किसी गृहस्थ का भी साधु संघ करना पड़े या किसी ब्रह्मचारी का भी संघ करना पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये हम सोचेंगे नहीं नहीं ये जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ है, मैं अछूत हो जाऊंगा इसका संघ। कनकदास की तो कथा आप जानते होंगे, उड़पी में कनकदास जो है वो भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे, और उन दिनों यहां तक कि मध्वा संप्रदाय में भी जो ये समस्या थी कि जन्मजात ब्राह्मण जो हैं उन्हीं को अनुमति थी मंदिर में जाने, यहां तक कि रावण संप्रदाय में भी समस्या थी। इसी कारण से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने संन्यास खुद लिया, हरे कृष्ण। क्यों? क्योंकि अन्य संप्रदाय कैसे संन्यास कैसे ले, क्योंकि वो तो स्वयं ब्राह्मण परिवार से नहीं है। तो इस धारणा को गलत साबित करने के लिए भक्ति सिद्धांत मान रहे संन्यास से, ये भी एक कारण है। तो उन्होंने देखा कनकदास ने वो दर्शन नहीं कर पा रहे, वो रो रहे थे बाहर खड़े, वो रो रहे थे और ठाकुर जी देख रहे हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहा है, उसको भीतर नहीं आने दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, कृष्ण बलराम जी देख रहे हैं आप, यहां तो खैर बाहर से दर्शन हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कृष्ण बलराम जी उस तरह से दर्शन दे रहे हैं, आप उधर से दर्शन कर रहे हैं और क्लास हमारी उस तरह चल रही है और भगवान का एक शुद्ध भक्त आना चाह रहा है मंदिर में, आप उसको भीतर नहीं घुसने दे रहे। तो क्या किया उड़पी कृष्ण ने, उन्होंने जो है अपना मुख बदल दिया और सड़क की तरफ अपना दर्शन देने लगे। आज भी जो है उनका दर्शन बाहर से प्राप्त हो सकता है, यानी कि अगर देखा जाए तो कनक दास जो है उनको दर्शन दिया भगवान ने, अपने भक्त के लिए भगवान ने अपना जो है मुख बदल दिया। लेकिन कनक दास जैसे भक्त भी तो बनना पड़ेगा उसके लिए। तो कहने का अर्थ यह कि भगवान का जब भक्त बनते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग फिर किसी वर्णाश्रम धर्म में नहीं है, शुद्ध भक्त भगवान के वर्णाश्रम धर्म में स्थित नहीं है, वो वर्णाश्रम धर्म से परे होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए बात है। तो इस प्रकार हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे अगर परंपरा में देखें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी या फिर श्रील प्रभुपाद या उनके गुरु महाराज या फिर उनके पिता, ये कोई भी ब्राह्मण परिवार से नहीं है, लेकिन इन्हीं ने जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोग बड़ा सावधान रहे, हम लोग बड़ा ध्यान रखें इन बातों का कि हम सोचे नहीं नहीं कि ये व्यक्ति जो है गा नहीं सकता है, ये व्यक्ति प्रवचन नहीं दे सकता है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, तो ये वैष्णव कैसे हो सकता है। हम सुन रहे हैं, ये भी धारणा हो जाती है कि वैष्णव को पहचान ही नहीं पाते हैं। कई बार भक्त बेचारे वो शिक्षित नहीं है, उनका जन्म जो है शूद्र परिवार में हुआ, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, ना वो गा सकते हैं, ना वो बजा सकते हैं, ना वो कथा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो झाड़ू पोंछा मार सकते हैं, चरणामृत दे सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त। समस्या क्या है कि हम लोग आज की परिस्थिति में ऐसा हो गया, कई बार माया इतनी भ्रमित कर देती है हमें कि हम वैष्णव को कई बार उसकी भारी क्षमताओं के आधार पर उसको पहचाने लगते हैं, है कि नहीं। किसी ने पूछा कि प्रभु जी आप उनसे दीक्षा क्यों ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे दीक्षा क्यों ले रहे हैं, उनका प्रवचन बड़ा अच्छा लगता है इसलिए दीक्षा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है दीक्षा का आधार प्रवचन और कीर्तन करना नहीं है सिर्फ, लेकिन दीक्षा का आधार वैष्णवता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी जो है भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है, हम लोग भारी प्रदर्शन से ये ना समझे क्योंकि इसमें कला नहीं है, इसमें क्षमता नहीं है, तो ये कैसे वैष्णव हो सकता है। तो हम लोग बड़ा सावधान रहना चाहिए इन चीजों में। तो लेकिन इंद्र तो पहचान गए क्योंकि वही भगवान के भक्त हैं, वो वृत्तासुर को पहचान गए कि वृत्तासुर जो है वैष्णव है, लेकिन फिर भी ये युद्ध करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कर्तव्य के लिए हमें इस प्रकार कार्य करना पड़ता है, जैसे कि मैनेजमेंट में भक्त होते हैं, मंदिर चलाना पड़ता है, कई बार कई भक्तों को डांटना पड़ता है, भक्ति भक्त को डांट रहे हैं, भक्ति भक्तों को सुधार रहे हैं, है कि नहीं। तो कई बार मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कई प्रकार के नियम बनाने पड़ते हैं जो शायद सबको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक है मंदिर को चलाए रखने के लिए। तो इसलिए हम लोग बड़ा सावधान होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, इनके जीवन से हमें कुछ बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इन्होंने अपना कैसे जीवन बिताया। प्रहलाद महाराज महाभागवत है, बलि महाराज ने भी पूरी भगवान की शरण ली बाद में, वो भी महाभागवत बने, महाजन बने। तो हम लोग जब इस प्रकार जब धारणा रखेंगे, इस प्रकार जब हम लोगों का आचरण शुद्ध होगा, तो कोई किसी भी परिवार का क्यों ना हो कोई समस्या नहीं है। भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है, भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, है ना। कई बार लोग जन्म पत्री देखने जाते हैं, वो पिछले जन्म में तो आप भक्त थे ही नहीं, कैसे भक्त बन सकते। शुद्ध भक्तों की कृपा से सब कुछ संभव है। आप पिछले जन्म में भक्त या नहीं भक्त, एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी भक्त ने बोला कि गुरु महाराज पिछले जन्म में मैं एक वो था, पुजारी था या पता नहीं क्या बोला उसने, और मैं गिर गया। महाराज जानते बोले क्या बोले, महाराज पिछले जन्म में आप भक्त थे, इस जन्म में भी आप भक्त हैं और आगे भी भक्ति करते रहो। तो कहने का अर्थ यह है कि हम पूर्व जन्म में देखेंगे हम ये थे या वो थे, या हमारा जो है इतिहास ठीक नहीं है, हिस्ट्री ठीक नहीं है, इसको आने से पहले जो है हम लोग का जो है ठीक नहीं था आचरण, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति कोई भी कर सकता है, पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, लेकिन बशर्ते वो भक्ति करता रहे और भगवान का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों को इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए ताकि हमें सही दृष्टि मिले, हम भक्तों को गलत ना पहचाने, उनके शरीर को देखकर हम गलत ना समझ जाएं। श्रील रूप गोस्वामी भी जब लीला स्मरण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, श्रीमती राधा रानी जो है फूल चुनना चाह रही है और पेड़ की टहनी को पकड़ना चाह रहे हैं, कृष्ण छुपके बैठे हुए हैं, उन्होंने टहनी नीचे की, राधा रानी टहनी को पकड़ा, कृष्ण टहनी को छोड़ दिया, राधा रानी लटकने लग गई टहनी के साथ। श्री रूप गोस्वामी ये दृश्य देखकर इस लीला का स्मरण करके रूप गोस्वामी जो है वो हंसने लग गए। सामने से एक वैष्णव जा रहे थे, कुरूप थे बेचारे, उन्होंने सोचा कि शायद मुझे देखकर हंस रहे हैं, बड़े दुखी हुए। वो श्री रूप गोस्वामी का लीला स्मरण बंद हो गया, सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि क्या कारण है आप दुखी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लीला स्मरण नहीं हो पा रहा, मेरे से मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कृष्ण को, उनका जरूर कोई अपराध हुआ है आपसे। उनका सभी वैष्णव को बुलाया जाए, वृंदावन के जितने वैष्णव हैं सबको प्रसाद परोसा जाए, जो भक्त नहीं आएगा वो आपसे दुखी। तो इस तरह से श्री रूप गोस्वामी ये शिक्षा दे रहे हैं हमें, आने वाले 30 तारीख को उनका तिरुभाव है, तो श्री रूप गोस्वामी हमको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उपदेशामृत में उन्होंने श्लोक लिखा है, दृष्टे स्वभाव जनित वपुष्य दोषे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में लिखा है श्लोक को, ताकि हम लोग को सावधान किया कि ऐसा कभी हो तो हम लोग गलत ना पहचान लें किसी भक्त को, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, और कोई व्यक्ति रुग्ण है, बीमार है, कुरूप है, वो काले रंग का है, अफ्रीकन है, देखने में ठीक नहीं लगता है, तो इससे जो है वैष्णव की पहचान नहीं होती है। वैष्णव की पहचान होती है किससे, सरलता से, समर्पण से, कि कितना वो समर्पित है अपने गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, भगवान के लिए। इससे जो है उसकी पहचान होती है कि वो वैष्णव है, भारी दृष्टिकोण से नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी में इसी तरह से भक्त बनाया है ना। प्रभुपाद ने देखा ये मलेच्छ है या चंडाल है, ये भक्त नहीं बन सकता है, प्रभुपाद ने सबको दीक्षा दे दी, अर्चे विग्रह की सेवा में लगा दिया। स्त्री वेश्या शूद्रा ये भी अंतिम परामृति, स्त्री हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रभुपाद भगवान कहते हैं गीता में कि ये सब जो है परम गति को प्राप्त कर सकते। इसलिए आप देखेंगे वेस्ट में जाएंगे तो वहां पर माताओं को भी, यहां पर भी माताओं को भी दीक्षा दी, मंत्र दिया, गायत्री मंत्र दिया, जो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार शायद नहीं संभव था, लेकिन प्रभुपाद ने करके दिखाया, प्रभुपाद ने क्रांति लाकर दिखाया, प्रभुपाद चमत्कार करके दिखाए, जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्होंने भारतवर्ष में जरूर किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तो पूरे पृथ्वी में सब जगह कर दिया, सभी देशों में कर दिया, प्रभुपाद ने करके दिखाया। इसलिए हर देश में, हर प्रांत में, हर राज्य में भगवान के भक्त हैं, और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो इतने ऊंचे ऊंच कोटि के वैष्णव हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते, और उन सबको महापुरुष की शरण मिली है। तो हम लोग जो है प्रयास करें और भक्ति में लगे रहे, क्योंकि कलयुग में स्वाभाविक है कि भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, और खासकर कोई जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिसके प्रारब्ध अच्छे नहीं है, उसके लिए भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुद्ध भक्त के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति समर्पण की भावना होगी तो बड़े से बड़े बाधाओं से हम लोग पार कर सकते हैं और भगवान की शरण प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
धन्यवाद। क्योंकि जैसे इस अध्याय के आदि में जो पर्सनिफाइड सिन है वो मारने के बाद इंद्र के पीछे भागते हैं, जो पर्सनिफाइड सिन है वो उनके पीछे भागते हैं इंद्र के पीछे, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति मारा है। तो ऐसे ही विष्णु देव का भी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया और आपने बताया कि ये वाली भी लीला भगवान ने रचे, तो फिर इंद्र के पीछे सिन के पर्सनिफाइड सिन भागने के क्या रीजन है?
नहीं नहीं, मतलब आपने बताया भगवान किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं शिक्षा देने के लिए, जैसे औरंगजेब को निमित्त बनाया है ताकि जयपुर जा सके। औरंगजेब की अपनी इच्छा है, भगवान की भी अपनी इच्छा है। औरंगजेब की इच्छा है कि जो है इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, तो ठाकुर जी ने देखा अच्छा है मंदिर तोड़ना चाहता है, ये अच्छा है, इसके माध्यम से मैं जयपुर जाऊंगा, मंदिर जब तोड़े जाएंगे तो पुजारी मुझे जयपुर ले जाएंगे, चलो इनको मैं अनुमति देता हूं, सैंक्शन बाय परमात्मा, तोड़ो मंदिर। मंदिर तोड़े गए, ठाकुर जी पहुंच गए जयपुर। इसी तरह से इंद्र को निमित्त बनाया भगवान ने। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे, है कि नहीं? तो इंद्र को माध्यम बनाया भगवान ने कई स्थानों में, गोवर्धन लीला में भगवान ने इंद्र को माध्यम बनाया, है कि नहीं? लेकिन इंद्र को माध्यम बनाकर क्या हुआ, गिरिराज जी को धारण कर लिया। तो ये ऐसा होता है, हमारे ब्रह्मा जी को भी निमित्त बनाया ब्रह्म विमोहन लीला में। तो निमित्त बनाते हैं भगवान देवी देवताओं को, ये देवताओं का सहयोग लेके देवताओं के माध्यम से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं।
जो फल है
फल तो भुगतना पड़ेगा, औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े वो तो वो भुगत ही रहा होगा, उससे थोड़ा बचेगा वो, उसकी प्रबल इच्छा है ना मंदिर तोड़ने की, तो वो इच्छा पूरी की भगवान ने, लेकिन फिर अपनी लीला भी की है, वो जो कर रहा है गलत वो तो भुगतना पड़ेगा ना।
जैसे आपने मैनेजमेंट का बताया, तो अगर मैनेजमेंट करते हुए व्यक्ति हर किसी को तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नियम बनाया, नियम इसलिए क्योंकि लोग तोड़ रहे हैं, जो भक्त हैं या जो तोड़ रहे हैं, तो फिर उसको जो मैनेजर है अगर वो दूसरे प्रश्न गुस्सा हो जाते तो फिर क्या रिएक्शन है?
नहीं देखिए, अगर करेक्शन जब होता है उसका आधार द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर द्वेष के आधार पर अथॉरिटी भी करेक्ट करेंगे तो उनको भी अपराध लगेगा। ऐसा नहीं कि जो अथॉरिटी है मैनेजमेंट में है उनको भी अपराध लगता नहीं है, वो अपराध से परे हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ तो ज्यादा खतरा है। तो जहां भक्त को करेक्ट कर रहे हैं द्वेष की भावना से कि इसको हटा दूं या उसको क्रश कर दूं, है कि नहीं? क्योंकि एक जमाने में ये जो है मुझे दुख दे रहा था, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप में अथॉरिटी हूं टेम्पल का, तो रिएक्शन तो देना पड़ेगा ना। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने पद को संभाल के रखना है तो मिसयूज नहीं कर सकते अपने पोजीशन को, हम यह अधिकार भगवान ने नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, ना ब्रह्मा जी तक को नहीं दिया, तो हमें कैसे दे देंगे? क्योंकि आप देखिए कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर कोई अथॉरिटी होता टेंपल का वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि है, गुरु का प्रतिनिधि है, वैष्णव का प्रतिनिधि है, तो वो अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं? सावधान रहना पड़ता है बहुत। तो करेक्शन का आधार होता है सुधार, जिसमें दया की भावना है। लेकिन अगर हम सुधार करते हैं इस भावना से कि द्वेष, लेकिन सामने वाला भक्त ये ना सोचे कि ये मुझे सुधार रहे हैं तो इनके यहां हृदय में द्वेष है, तो वो अपराध कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ओ ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं, शायद इनके अंदर एनिमोसिटी है, एनवियसनेस है, इसलिए मुझे बार बार करेक्ट करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, तो वो भी अपराध रहेगा। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, वो कैसे भी हमें करेक्ट करें, हमें विनम्रतापूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। सरल थे बोस। ड्यूप्लिसिटी को कैसे ओवरकम किया जाए, कपटता को, वैष्णव की शरण लेंगे क्योंकि वैष्णव पहचान सकते हैं हमारे अंदर कपट है कि नहीं है। जब तक वैष्णव की शरण ले लेंगे तो कपटता से कैसे हम लोग बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। कोई तो होगा बताने वाला हमें कि भैया आप कपटी हो, हमारे सुधार के लिए कोई तो बोले आप कपट कर रहे हो, कुछ बोल कुछ रहे हो और अंदर कुछ हो, डबल रोल है, डबल स्टैंडर्ड है आपका। स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए लेकिन आपका स्टैंडर्ड डबल है, ठीक है। तो इस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करके भी साधु संत से और साधना, अच्छी साधना से और वैष्णव के प्रति सेवा की भावना से, वैष्णव की शरण में रहकर हम लोग कपटता से बच सकते हैं। तीन
क्या अवॉइड, क्या फेवरेबल, क्या
फेवरेबल, क्या शुद्ध भक्ति के लिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता म जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित गीत, ये सब करी, ठीक है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो श्रील रूप गोस्वामी को बताया वो भी ध्यान से सुनिए। निषिदाचार कूटी नाती लाभ पूजा प्रतिष्ठा जतो उप शाखा घन, ये सब उप शाखाएं हैं चैतन्य महाप्रभु, इस सबका छेदन करो, ये सब करना पड़ेगा ना शुद्ध भक्त बनने के लिए। शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें सहन करना पड़ेगा, वैष्णव बनना है तो सहन करना पड़ेगा। आप सही हो या गलत हो वो कोई मायने नहीं रखता, अगर वैष्णव बनना है तो सहन करना पड़ेगा। मैं सही हूं यह कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, मुझे क्यों बोल रहे हैं मैं गलत हूं। तो नम्रता का मतलब क्या है, नम्रता का मतलब है कि अगर आपकी गलती ना भी हो तब भी मान लेना कि आप गलत हैं। कोई अगर कहे आपको, वरिष्ठ वैष्णव कहे कि आप गलत हैं, आप ही ने ऐसा किया है, तो मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो देखा भी नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं, नहीं आप ही ने किया है। अच्छा प्रभु जैसे आप कहें वैसे ही, ठीक है मैंने किया है, मुझे लेकिन महाप्रसाद दे दीजिएगा बस। तो क्या है बेसिकली हायर पर्पस के लिए हमें जो है अपने जो जो लोअर एडजस्टमेंट्स हैं या जो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स हैं या फिर जो हमारे और अभी का आज का सिचुएशन है उसको उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसको त्यागना पड़ेगा हमें अच्छा लगे या ना लगे। हायर पर्पस के लिए हमारे देखिए लक्ष्य क्या है जीवन का, ये ध्यान रखना है। हमारा लक्ष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कुछ भी त्यागना हो त्यागो, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं अनुकूल है जो उसको स्वीकार करो और प्रतिकूल उसको त्याग दो। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति को नहीं त्यागना है, उसके लिए कुछ भी अगर त्यागना पड़े, अपना अहंकार त्यागना पड़े, लाभ पूजा प्रतिष्ठा त्यागना पड़े, धन त्यागना पड़े, परिवार त्यागना पड़े, समाज त्यागना पड़े, देश त्यागना पड़े, संसार त्यागना पड़े, लेकिन तब भी शुद्ध भक्ति में छोड़ो। तैयार है आप सब, परीक्षा होगी हम सब की, अगर शुद्ध भक्ति जाते तो परीक्षा होगी, नहीं जाते तो नहीं होगी परीक्षा। जो डिग्री है शुद्ध भक्ति की, भक्ति की जो डिग्री है आपकी, उस आधार पर परीक्षा होती है, भगवान परीक्षा। भक्ति में सरलता, सरल बने, सरल भक्तों का संग करें, सिंपल, संग का प्रभाव पड़ जाएगा। प्रभु जी तो सब कुछ बता देते हैं, कुछ छुपाते नहीं, जो हैं वही हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे उनके साथ रह रहे। संघ का प्रभाव पड़ता है, साधु संघ में रहना चाहिए हमें। अधिकांश भक्त सरल ही होते हैं, उनका संग करिए वैसे हो जाएंगे आप। सरल भक्तों की कथा सुनिए, वृत्तासुर की कथा सुनिए, वृत्तासुर कितने सरल है कि नहीं। वो शुद्ध भक्ति चाहते हैं भगवान की, वो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, वो वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, उनका जीतना है जीत लो, नो प्रॉब्लम, ले लो आप जीत जाओ, मारो मुझे, मारो मारो, ले जाओ सब कुछ, लेकिन मुझे वैकुंठ धाम प्लीज मार दो। आप वज्र छूट गया आपके हाथ से, उठाओ उठाओ, गदा फेंका उन्होंने तो वज्र गिर गया उनका, तो प्रवचन देना शुरू किया, वो तो उठाओ उठाओ वज्र उठाओ, जल्दी मारो मुझे, मैं जाना चाहता हूं भगवान के पास, शरीर को तो मारोगे ना, लेकिन मैं तो धाम जाना। तो ये मतलब हायर पर्पस के लिए हमें कुछ भी त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए, अगर कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है, नहीं लक्ष्य तो फिर क्यों त्यागेंगे, क्यों त्यागेंगे, नहीं लक्ष्य होगा, अगर पितासुर का लक्ष्य नहीं होता मान लीजिए, तो उसी समय इंद्र को खत्म कर देते हो, है कि नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि इंद्र के द्वारा मारे जाए और जल्द से जल्द जो है भगवान की शरण में जाए, ये उनका उद्देश्य। ये लास्ट क्वेश्चन,
मेटीरियल लाइफ हैप्पी का क्या मतलब है, अगर हम कंफर्ट जोन में हैं तो हम हमारे से प्रार्थना भी नहीं होती, थोड़े से हम डिस्कंफर्ट जोन में आते हैं तो थोड़ी सी प्रार्थना शुरू कर देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी जो प्रभुपाद ने बोला?
हैप्पी का मतलब है कि कृष्ण कॉन्शियस होना, कृष्ण भावना भावित होना ही हैप्पी स्टेज है हमारा, सिंपल सी बात। तो जिस परिस्थिति में आप कृष्ण भावना भावित है वही आपका हैप्पी सिचुएशन, दुख हो या ना हो सो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुखी होकर कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, दुखी होकर कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, जीकर कृष्ण भावना भावित है तो अच्छा है, मरकर कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, सोते हुए कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, रोते हुए कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, महाप्रसाद लेते हुए कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, भगवान का दर्शन करते हुए कृष्ण भावना भावित हो तो वो अच्छा है, भगवान के मंदिर जाते हुए कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, गृहस्थ रहकर अगर कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, ब्रह्मचारी रहकर कृष्ण भावना भावित है तो वो अच्छा है, सब अच्छा ही है, बुरा कुछ है ही नहीं भक्तों के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुड प्रेमानंद।